ओम शांति। प्यारा लगता है ये गीत सभी को, गाते रहते हैं, गाते रहना चाहिए हैं? हाँ कोई बात नहीं, वो तो हम जानते हैं। ये गीत ईश्वर शब्द आने से इंटरनेशनल हो गया है, बाबा आने से जरा प्राइवेट हो जाता है। हाँ शब्द बहुत अच्छे इसके, और इसको हम सब प्रैक्टिस में लाएंगे इस तरह से। अब सभी जो शांति वन में हैं, एक प्रैक्टिस करेंगे इस गीत से जुड़ी हुई। हर घंटे में जो गीत बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, सभी उसका फायदा उठाते ही होंगे, उठाते हैं। कुछ अभ्यास अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक मिनट यूं ही बीत जाए। हम अपने सामने कुछ वक्त रख लिया करें, ये अभ्यास करने हैं। अगर एक दिन का अलग अलग अभ्यास ले लें तो भी बहुत सुंदर, कुछ दिन के लिए कोई एक अभ्यास ले लें तो भी बहुत सुंदर। तो मुझे जो आजकल बहुत अच्छा अभ्यास लग रहा है, वही मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। बहुत सब जानते हैं, बाबा की हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है। सभी माताएं भी, भाई भी जो सेवा में आए हैं, सभी जब तक यहाँ हैं, हर घंटे जो गीत बजता है, जब भी गीत बजे सवेरे से शुरू हो जाते हैं, उठाने के लिए भी गीत है, फिर योग के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे, तो ये अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा हो, बहुत तुरंत 5-7 सेकंड में फील करें बाप दादा ऊपर से नीचे आ गए और हजार भुजाएं फैला दी हमारे सिर के ऊपर। ठीक है, अभी करेंगे एक मिनट, लाइट कर रहे हैं, एक मिनट सभी अभ्यास करेंगे। सभी देखें ऊपर से बाप दादा नीचे उतर रहे हैं, मेरे सामने दृष्टि दे रहे हैं मुझे। और बाबा ने अपनी हजार भुजाएं फैला दी हैं मेरे सिर के ऊपर। याद दिला रहे हैं बच्चे, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे सदा साथ हूँ। ओम शांति। हम अपने जीवन में इस अवेयरनेस को, इस फीलिंग को बढ़ाते चलें। बाबा अपनी हजार भुजाओं सहित, एक शब्द और जोड़ लें, संपूर्ण शक्तियों सहित मेरे साथ है। जब हम ये याद करेंगे बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं कि हम केवल रिपीट करेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ इस सत्य को स्वीकार करते हुए, तो बाबा की संपूर्ण शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। और जहां बाबा और उसकी शक्तियां काम कर रही हों, वहां विजय ही विजय, माया का अस्तित्व नहीं रहेगा, हम भी बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मुझे चलते फिरते लोग बताते रहते हैं, मैं जरा कम सुनता हूँ टीवी आदि की बातें, कि आजकल विनाश की बातें फिर से बहुत आ रही हैं, कि धरती की आवाज सुना रहे हैं लोग कि धरती बोल रही है, फट गई है वो यही लैंग्वेज है, चार जगह फट गई तो बोल रही है मैं आती हूँ ऊपर नीचे से, अब तुम नीचे आओ या और ऊपर चले जाओ खुद देख लो। तो विनाश की परिस्थितियां तो संसार में आएंगी ही, क्योंकि भगवान कह चुके हैं बहुत अच्छा एक महावाक्य, बच्चे ये धरती अब देवताओं के लिए खाली होनी है, देवताओं के पावन कदम इस धरा को तभी तो सुशोभित करेंगे जब ये खाली हो जाए, इस धरा पर तो वो नहीं आएंगे, हम ही देव स्वरूप धारण करके इस धरा पर तो नहीं आएंगे। तैयार हैं सभी धरती को खाली करने के लिए? सोच ले जरा, धरती को खाली करना है तो धरती भरपूर भी हो जाएगी, फिर से उपजाऊ, न केवल खाने पीने और फल और सब्जियां मिलेंगी धरती से, लेकिन हीरे रतन मोती माणिक सब बहुत प्राप्त हो जाएंगे। तो आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम अपनी स्थिति को, अपनी शक्तियों को, बाबा के साथ को बहुत बढ़ाते चले। और बहुत अच्छी बात जो हमेशा बाबा कहते हैं, नेचुरल नेचर बनाओ, आदत बनाओ, परिस्थिति हमें ये सब बातें भुला न दें, इसके लिए उनका बहुत अभ्यास करके जो हमारी अच्छी अवस्थाएं हैं, जो हमारे अच्छे स्वमान हैं, उनका बहुत अच्छा अभ्यास करके हम उनको आदत बना लें। कुछ चीजों में हम अवश्य मास्टरी कर लें। और मैं फिर से आपको एक बहुत सुंदर चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जो रोज ही याद करनी है, उसे हम रिपीट करना नहीं कहेंगे, हमें बार बार याद करनी चाहिए। बाबा के इस साल के भी महावाक्य हैं अव्यक्त, शायद दूसरी या पहली मुरली कही है अव्यक्त के, जो बच्चे मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। आधार बना लें आप इस अपने जीवन का, समस्याएं आए और हम उनसे लड़कर उन्हें समाप्त करें, वो शक्ति भी हमारे पास है, परंतु वो हम तक आए ही नहीं। बहुत अच्छी अवस्था ये है, क्योंकि यदि हम उनसे युद्ध करेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट होंगी, पर हम उन्हें आने ही न दें तो बहुत अच्छा सभी अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मैं आपके सामने इस संबंध में कुछ और बातें भी रख लेना चाहता हूँ, सबके काम आएंगी। पहले तो सभी अपने अंदर ये संकल्प कर लें, हमें मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति को बहुत सुंदर, बड़ा नेचुरल बना देना है। तो पहली चीज, हम स्वीकार करें कि हम मास्टर सर्व शक्तिवान हैं, हैं या नहीं? पीछे वाली बहने तो सोच रही हैं, पता नहीं हैं या नहीं, आगे वाले हैं, भाई लोग हैं, सभी क्यों हैं? हाँ, हम याद किया करें और अपने को याद दिलाया करें, जब से हम बाबा के बच्चे बने उसने अपनी समस्त शक्तियां हमें दे दी हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं, समातम शक्तियां हमारे पास हैं। हम इन शब्दों में याद किया करें, बाबा कह रहे हैं बच्चे आज से मेरी सभी शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार है, अब ये शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर में काम करेंगी। बार बार अपने को इस अवेयरनेस में, इस स्मृति में लाते रहें, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। बाबा के पास माताओं की आवाज पहुंचती है, माताओं की ज्यादा, तो योग लगाते हुए माताएं कहती हैं बाबा शक्ति दे दो, सहन शक्ति दे दो, कहती हैं माताएं, कौन कौन कहती है, हाथ उठाओ जरा, आज दिलाएंगे आपको, अरे भाई तो बहुत माताएं हैं, हाथ नीचे कर लो। अब बाबा कहता है, हे मीठी माताओं, मैंने सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, तुम मांग क्यों रहे हो? अपने पर्स में तो ढूंढो, माताओं के पास पर्स होता है ना, देखो तो सही, सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। इसको स्मृति में लाना ही शक्तिशाली बनना है। ये बात तो मनोविज्ञान भी कहता है, मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, वो सोई हुई हैं, उन्हें जागृत करो। लेकिन ये बात तो बहुत छोटी हो गई, मनुष्य के पास मनुष्य की शक्ति नहीं, हमारे पास हैं परमात्म शक्तियां, वो सोती नहीं, वो सदा जागृत हैं, केवल हमें उन्हें यूज करना है। स्मृति से हम उन्हें यूज कर सकेंगे तो सभी अपने को शक्तिशाली हैं हम स्वीकार कर लें, और इस स्मृति को कई बार बढ़ाएं। जब आप छत्र छाया का अभ्यास करें तभी ये भी याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने अपनी हजार भुजाएं सिर पर लगाई हैं, साथ में सारी शक्तियां भी दे दी हैं। बहुत आनंद आएगा, जीवन की बहुत सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम यदि शक्तिशाली हैं तो बाकी सब कुछ कमजोर है। हम यदि कमजोर हैं तो परिस्थितियां शक्तिशाली हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचान लेना है, हम कमजोर नहीं हैं। ठीक है, सभी स्वीकार करते हैं, शिव शक्तियां कमजोर नहीं, कमजोर को बल देने वाले हैं। अब मैं आप सभी को एक दूसरी चीज भी याद दिला देता हूँ, पिछली बार भी मैंने वो याद दिलाई है, जो थे उन्होंने सुनी है, फिर सुनेंगे, वो बात भी बार बार सुनने की है। मैं दो बातें लेकर चलता हूँ आपके सामने। बाबा ने इस बार कहा, और वो एक यूनिवर्सल सत्य है, सदा चारों युगों में तीनों कालों में चलने वाला सत्य है, कोई भी कर्म यदि श्रेष्ठ स्मृति से प्रारंभ किया जाए और यदि साधारण स्मृति से प्रारंभ किया जाए, दोनों में महान अंतर है। इसलिए भारत में भक्ति में ये रस्म चलती आती है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, है घर बनाया, भाई बच्चों को स्कूल भेज रहे, नया खाता खोला, दुकान खोली, बिजनेस शुरू किया, नौकरी मिली, कोई भी काम जो अच्छा शुरू होता है तो पंडितों से ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ ना कुछ रस्म जरूर कराते हैं, मंदिर भी बनाएंगे, मूर्ति रखेंगे, भगवान प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि जड़ मूर्ति में प्राण आ जाए। क्या है वो प्राण, सोचा आपने कभी? जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं उस समय उस देव या देवी से संबंधित उनके वाइब्रेशन मूर्ति में समा जाते हैं। मूर्ति क्योंकि पत्थर की है, प्रकृति से आई है, वो वाइब्रेशन जो मंत्रों के द्वारा वहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं वो मूर्ति में समा जाते हैं, उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति पूजनीय नहीं मानी जाएगी। तो रस्म रही, क्योंकि जिस श्रेष्ठ स्मृति से हम कर्म प्रारंभ करेंगे, उस पूरे कर्म पर उन संकल्पों का संपूर्ण प्रभाव चलता रहेगा। ध्यान दें आप इस बात पर, आप भोजन ही बना रही हैं घर में, जरा अपने को जागृत करें, शुरू कर रहे हैं तो कुछ अच्छे संकल्पों के साथ शुरू करें, उसका इफेक्ट संपूर्ण भोजन पर जाएगा। सबसे अच्छा संकल्प क्या हो सकता है भोजन बनाते, मैं बाबा के लिए भोजन बना रहे, स्वयं भगवान के लिए, उसको भोग लगाएंगे, फिर सब उसके बच्चे खाएंगे, एक छोटा सा सिंपल संकल्प है, बहुत सुंदर इफेक्ट इस संकल्प का भोजन पर जाएगा। करके देखेंगी सभी बहनें, भाई कौन कौन भोजन बनाते हैं अपना, हाथ उठाओ। अच्छा भाई भी हैं, मैंने ये बात पहले भी सिखाई है, भोजन बनाते हुए भोजन पर दृष्टि तो पड़ती रहती है। एक चेंज तो ये करेंगे कि जल्दी जल्दी नहीं, धैर्यवत साथ में अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। खाने से पहले भी करना है, लेकिन बनाते समय 21 बार कम से कम। इसका बहुत सुंदर परिणाम आप अपने परिवार पर देख सकेंगे। अगर आप लगातार इस अच्छे अभ्यास से भोजन बनाएं, तो संपूर्ण भोजन पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लेगा और जो भी उसे खाएगा उसका चित्त शांत होगा। अगर वो ज्ञान में न भी चले मान लो, तो चित्त शांत अवश्य रहेगा। किसी को क्रोध आता है, कोई बुरे संग में है, माताओं की जो आजकल समस्याएं हैं घरों में, कौन सी, बच्चों की, युवा पीढ़ी दूसरी दिशा में जा रही है, माँ बाप की सुनती नहीं है, एक बहुत जबरदस्त समस्या है या नहीं, भाइयों के सामने भी है, बहुतों के सामने है। जिनके परिवार में ये समस्या नहीं है वो तो समझो इस संसार में बड़े भाग्यवान हैं। जिनके बच्चे आज्ञाकारी हों, चरित्रवान हों, अच्छे पथ पर चल रहे हों, वो तो बहुत भाग्यवान है। और जिनके बच्चे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई हो, उन्हें सोचना है। बहुत सारे बाप हमें कहते हैं, माँ बाप मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं हमें लड़के ही पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। और समस्या ये है कि लड़के पैदा तो हो गए, लेकिन उन्होंने माँ बाप का जीना मुश्किल कर दिया है। फिर कहते हैं ये मर जाए तो अच्छा है, पहले पैदा करने की चिंता थी, फिर मारने की चिंता हो रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। जनरेशन गैप, युवा पीढ़ी के विचार, उन पर विदेशी कल्चर का प्रभाव, स्वतंत्रता, इंटरनेट का प्रभाव, टीवी का प्रभाव, हमें पता नहीं है कि उनके भविष्य को नष्ट करने जा रहा है। क्योंकि हमें जानना चाहिए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखा सकें, जो बच्चे सीख सकें, जितनी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होगी, जितना हम व्यर्थ विचार करेंगे, जितना हम व्यर्थ देखेंगे, उतना ही सफलता का मार्ग विघ्नों से भरा हुआ होगा। युवा पीढ़ी इस बात को समझ ले अगर अच्छी तरह, जो समझा सकते अपने बच्चों को वो समझाएं। इसलिए सदैव अपने घरों में मैं तो ये कहता हूँ, एक स्लोगन लिख के रख देना चाहिए, बच्चे पढ़े केवल, तुम्हारे पॉजिटिव विचार तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आपके कहने से वो नहीं समझेंगे, हर घर में लिखा होगा तो बच्चे पढ़कर कुछ न कुछ सीखेंगे अवश्य। निगेटिव संकल्प सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार है। इसको आजकल का बुद्धिमान मनुष्य भी नहीं जान पा रहा है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को समझ लेना चाहिए, हम कहीं व्यर्थ संकल्पों के कारण अपनी सुख संशक्तियों को नष्ट नहीं कर रहे हैं। सभी अच्छी तरह ध्यान देंगे अपने पर, तो श्रेष्ठ स्मृति से कर्म प्रारंभ करेंगे। कोई भी कर्म, आप घर से बाहर चल रहे हैं काम के लिए, आप सेवाओं में जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं, आपके पास साइकिल है, साइकिल पर पैर रखा है आपने पेडियल पर, कोई स्मृति फिक्स करो बुद्धि में, इसका अभ्यास करेंगे। और बहुत अच्छी स्मृति जो हमें सदा काम आएगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघन विनाशक हूँ। रास्ते के सभी विघन समाप्त करेगी ये स्मृति। हम एक चीज पर और ध्यान देंगे, सभी शक्ति का प्रयोग करें अपने जीवन में, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, है ना सभी। इस लिए ये बाबा का महावाक्य है, जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं वो अपनी संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। इस संकल्प शक्ति का यूज करें आप। हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको रियलाइज कर लें, स्वीकार कर लें। बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। हम अच्छे अच्छे संकल्प करें और उसका प्रभाव देखें। हम अपने संकल्पों से दूसरों के संकल्पों को बदलते हुए देखें, बदलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुरे संग में जा रहे हैं, आप बार बार सोचते हैं क्या होगा इनका, ये तो मानते ही नहीं है, ये तो हमारी सुनते ही नहीं, पता नहीं ये क्या करेंगे, ये सोचता है ना मनुष्य। ये न सोच के अब आप सोचो ये भगवान के बच्चे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, इनके विचार बदल जाएंगे। मन से उनको संकल्प देने लगो, हे आत्मा अपने को पॉजिटिव करो, चरित्रवान बनो, तुम भगवान के बच्चे हो, तो आप अपने इन संकल्पों का प्रभाव बच्चों पर प्रैक्टिकल में देखेंगे। बहुत सुंदर एक अभ्यास है। आप अपने जीवन को इस तरह एक लेबोरेटरी बना दो, प्रयोगशाला। माताएं भी लेबोरेटरी में काम करने लगे। अब लेबोरेटरी जानते हैं, साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए लैब बनी होती है कॉलेजों में, और जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो लेबोरेटरी में जाके वो सिद्ध करते हैं, देखते हैं भाई ये सिद्धांत सत्य है। सभी अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाएं और देखें हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है। किसी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं लगता है ये सुधरेगा नहीं, इसका प्रभाव क्या होगा, वो सुधरेगा नहीं, इस संकल्प को चेंज करें कि नहीं, ये भगवान का बच्चा है। हर आत्मा सुधरने वाली है, हर एक आत्मा पवित्र थी, सत्व प्रधान थी, ये सुधरेंगे। इस संकल्प का असर देखो, रोज अपनी दिनचर्या में कोई समस्या सामने है उसके बारे में हम ये सोचते हैं क्या होगा, पता नहीं ठीक ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका प्रभाव। और ये सोचना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब ये समस्या जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, इस संकल्प का प्रभाव। देखते चले अपने जीवन में, सभी अपने जीवन को इस तरह प्रयोगशाला बनाएं जिनमें संकल्पों के प्रयोग करते रहें। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस बार के व्यक्त मूल्यों में दो बार आ चुकी है, और जिन्होंने सुना है बहुतों ने अभ्यास किया ही होगा, फिर ध्यान दें और अपनी साधना को इस बात से बिल्कुल सरल बनाएं, जीवन को सरल बनाएं, समस्याओं को सरल बनाएं। वो बात है कि जो वरदान तुम्हें बाबा से मिले हैं उन्हें रोज सवेरे और कर्म के समय स्मृति में लाया करो। वरदान मिले हैं, और वरदान का अर्थ होता है बच्चे में भी जानते हैं ना, जो कह दिया बस वो होने लगा, ये था भगवान का वरदान। हम सभी को तो डायरेक्ट भगवान ने वरदान दिए हैं। हम अपने लिए कोई भी 5 वरदान चुन लें और उन्हें सवेरे याद किया करें, ये बाबा के वरदान हैं। कर्म के समय, समस्या के समय, कोई कठिन काम हो जाए, कोई विघ्न डालने लगे उस समय, कहीं आपको सफलता कठिन लग रही हो उस समय उन्हें याद करें, दिखाई देगा वो काम करने लगे। तो मैं आपको कुछ वरदान याद दिला देता हूँ जो बाबा ने सभी बच्चों को दिए हैं। भगवान ने आत्माओं को ये वरदान दिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसने वरदानों को वरदान रूप में स्वीकार कर लिया उसके लिए वो वरदान बन गए। ऐसे नहीं हम सोच लें कि ये तो केवल बाबा के महावाक्य हैं, ये तो बाबा सदा ही बोलता है, ये नहीं, ये मेरे लिए वरदान है। अब इसको इस रूप में रोज सवेरे याद करेंगे, बहुत इफेक्टिव होगा, बड़ा प्रभावशाली रहेगा। हम बाबा का आह्वान करें और देखें कि बाबा ऊपर से उतर कर नीचे आ गए हैं, हमारे सिर पर उसने हाथ रख दिया अपना वरदानी हाथ, और वरदान दिए। पहला सुंदर वरदान, बच्चे जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये वरदान दे दिया हमें भगवान ने, सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखकर। लेकिन हम इसे भूल सकते हैं, इसलिए रोज सवेरे और बीच में निश्चित कर लें टाइमिंग, 3 बार 2 बार सोते समय, इस विशेष कार्य के समय याद करें बाबा ने वरदान दिया है। वरदान कहो या वचन दिया है, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। याद करें, उपस्थित हो जाएगा, कितना सुंदर अनुभव होगा, ठीक है ना। दूसरा वरदान याद कर लें, बाबा वैसे ही आते हैं, वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया और कहा बच्चे आज से सफलता तुम्हारे साथ साथ चलेगी, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा, जहाँ भी तुम कदम बढ़ाओगे सफलता तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। कितना सुख मिलेगा याद करने से ही, जो काम हमें कठिन लग रहे हो वो बिल्कुल सरल लगने लगेंगे। जब काम करने जा रहे हैं दिन में, तब इस वरदान को फिर याद कर लो, तो अगर वो कार्य कठिनाई से सफल होना है तो सहज रूप से सफल हो जाएगा। इन अनुभवों की अथॉरिटी भी बनना है हमें, वरदानों के अनुभव बहुत सुंदर रहेंगे। तीसरे वरदान पे ध्यान दें, जो हमने मास्टर सर्वशक्तिवान की बात की, उसको इस तरह ले लें कि बाबा आ गए, हाथ हमारे सिर पर रख दिया और कहा बच्चे आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे पास रहेंगी, तुम उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, तुम उन्हें काम में लगा सकते हो, मेरी शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार। ये जरा गहरी बात है, वरदान भी गहरा है कि हम एक एक शक्ति को भेज सकते हैं कि जाओ ये काम करके आओ, ये समस्या हल करके आओ। मान लो हम देखते हैं एक पेशेंट है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, उसको सहन तक की नहीं काम कर रही है, वो बहुत पीड़ित है। हम इस वरदान को याद करके सहन शक्ति से बात करेंगे, जैसे सहन शक्ति साकार रूप में है, मूर्त रूप में है, कि जाओ उसके पास जाओ, उसको मदद करो। बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट का तरीका होगा। हम देख रहे हैं कि आपका कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई भयानक परिस्थिति आ गई, वो उसका सामना नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल उसकी स्थिति मरने जैसी हो गई है। शक्ति का आह्वान करें, सामना करने की शक्ति, उसको ऑर्डर दें कि जाओ उस आत्मा के पास, उसको सामना करने का बल प्रदान करो, बहुत अच्छे अनुभव होने लगेंगे। ये वरदानों का प्रैक्टिकल स्वरूप रहेगा। ऐसे ही चौथा वरदान याद कर लें, बाबा आ गए, सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे उस स्थान के भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे, जहाँ तुम उपस्थित होंगे आसपास के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा किसी भी कार्य में विघ्न प्रतीत हो रहा हो, इस वरदान को याद करके कार्य प्रारंभ करेंगे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये वरदानों को यूज करने की विधि है। क्लियर है ना सभी को? सवेरे याद कर लें, कर्म के समय याद कर लें। ऐसे चार पांच वरदान अपने पास रख लें, उसमें से आप चाहें तो किसी एक में स्पेशलिस्ट बन जाएं, मास्टरी कर लें। ये वरदान मेरा है, मुझे बाबा से प्राप्त है। एक एक वरदान को भी ले सकते हैं, तीन मिनट तीन मास तक एक वरदान की प्रैक्टिस कर ली जाए, पांच वरदान लेके तीन तीन मास तक उनको अभ्यास में लाया जाए, और लक्ष्य रख लें एक दो बार सवेरे, तीन बार कम से कम दिन में उस एक वरदान को याद कर लें, ताकि वो भूलेगा नहीं। क्योंकि हमें इस बात को सबको ध्यान में रखना है, सबको पता है कि अच्छी से अच्छी बातें भी समय पर भूल जाती हैं, परिस्थितियां भी हमें भुला देती हैं, या हमारे पास बहुत व्यस्तता होती है, हम और कुछ अच्छी चीजों में भी रहते हैं कभी कभी, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाती हैं। मान लो हम बाबा की किसी अच्छी सेवा में ही हैं, हम ज्ञान ही दे रहे हैं, तो अच्छी बातें उसमें हमें भूल सकती हैं। इसलिए उनको बार बार याद करके अपने अभ्यास में लाना इसकी बहुत जरूरत है। इससे जीवन सरल हो जाएगा। कर्म क्षेत्र पर बाबा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते रहेंगे। पसंद है सभी को? कर सकेंगे? करें। इसलिए समस्या है ये कहने की जरूरत नहीं। समस्या किसके पास आती है? किसके पास? जो समस्याओं को नष्ट कर सकता है, ये संकल्प करें आप। हम कमजोर हैं इसलिए समस्या आ रही, ये न सोचें। विघ्न उसके पास आए हैं जो विघ्न विनाशक है, तो विघ्नों का क्या होगा? कागज आपके पास चला जाए, कागज का क्या होगा? जलना है ना उसको। विघ्न उनके पास आए हैं जो विघ्न विनाशक हैं, तो विघ्न नष्ट होने ही हैं। अपने में ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे सभी। इसलिए मुझे एक बहुत अच्छी बात याद रहती है, दादी के जाने के बाद बाबा ने दादी की महिमा करते हुए कहा था ना, दादी ने अपना जीवन निर्विघ्न और निर्संकल्प स्थिति में जिया है। निर्विघ्न जीवन, हम अपने जीवन को ऐसे ढंग से जीने लगे हैं कि विघ्न आए नहीं। कुछ लोगों का जीवन जीने का ऐसा तरीका होता है कि वो बिना मतलब भी विघ्न आते रहते हैं। विचार करेंगे सभी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विघ्न नहीं आते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं विघ्नों का जैसे आह्वान कर लेते हैं। क्यों? विचार करेंगे सभी। बोल की गलती के कारण, गलत बोल विघ्नों को, छोटी सी बात को तूफान बना सकते हैं। अपने निगेटिव संकल्पों के कारण, बहुत बड़ी चीज है मनुष्य की भावनाएं। अपने लिए भावनाएं हो चाहे दूसरों के लिए भावनाएं हो, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। ध्यान देंगे सभी, कुछ भी हो जाए दूसरों के लिए हमारी भावनाएं बिगड़े नहीं। कभी कभी किसी की भावनाएं ऐसी भी हो जाती हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं, सारे खराब हैं, सभी धोखेबाज हैं, सभी गड़बड़ करने वाले हैं। हो जाता है ना ऐसा, किसी अपने से कष्ट पहुंच गया हो तो मनुष्य सोच लेता है सभी ऐसे हैं। और भावनाएं यदि मनुष्य ने बिगाड़ ली, दो चीजों पे ध्यान देना है, भावनाएं यदि बिगाड़ ली और जीवन में यदि निराशा भर ली, तो शरीर की बीमारियां भी बढ़नी ही हैं। हम अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल रख सकते हैं अपने मनोबल से, आत्मा के बल से। बाबा ने कहा था ना पिछले साल, ब्रह्मा बाबा को देखा, कभी टेक लेकर भी नहीं बैठे, देखा ना बाबा का बैठना, ये टांग इस टांग पर बिल्कुल सीधे, चश्मा भी नहीं पहना, किसी का हाथ पकड़ कर भी नहीं चले। फिर बाबा ने कह भी दिया था, बच्चों को तो सहारा लेना पड़ता है, साथ में हल्का भी कर दिया कि कोई बात नहीं, प्रकृति तमो प्रधान है। लेकिन रहस्य भी बता दिया था ब्रह्मा बाबा के साथ, ये आत्मिक बल का प्रभाव था। हम भी आत्मिक बल के द्वारा, संकल्प के बल के द्वारा अपने शरीर को भी बहुत चुस्त रख सकते हैं। अगर हम यही सोचते रहे अरे मैं तो बीमार हूँ, कोई कहे उठ के वहाँ चलो मैं तो बीमार हूँ, तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? और बीमार हो जाएंगे। और जो मनुष्य जितनी हिम्मत रखता है, जितनी चुस्ती से रहता है, उसकी बीमारियां भी उससे डर कर पीछे हट जाती हैं। तो हमें याद रखना है किसी भी कारण से अपने मनोबल को कमजोर नहीं पड़ने देना है, हिम्मत हारनी नहीं है। अब हमारी न केवल माया से युद्ध है, लेकिन समस्याओं से भी बहुत भारी युद्ध है, और आने वाले समय में प्रकृति से भी बहुत भारी युद्ध चलेगी। तीनों युद्ध करनी पड़ेंगी। बाबा की पहले मुरलियां चली हैं बहुत। हमारे अपने ही संस्कार यदि डिवाइन नहीं होंगे तो अपने ही संस्कार भी बड़े कष्टदायक हो जाएंगे अंत में। संबंध जिनमें तुम्हारा बहुत मोह है, वो तुम्हारे तुमको कांटे बनकर घायल करने लगेंगे। कर रहे हैं लोगों को, हम देख रहे हैं बहुत परिवारों में, आप हमसे ज्यादा देखते होंगे, मोहवश उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, और रात दिन लड़ाई झगड़ा, रात दिन लड़ाई झगड़ा, घर में चैन नहीं, शांति नहीं, लेकिन जरा भी अलग नहीं कर सकते। मैंने एक माता से पूछा, उसने प्रश्न किया, मेरा लड़का मुझे बहुत तंग करता है, विदेश में रहता है। तो विदेश में रह के तुम्हें कैसे तंग करता है? तो कहा मैं उसे फोन करती हूँ, और बस मेरा फोन करना और उसका कांटे चुभोना, कहा मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मैंने कहा फोन न करो ना फिर कुछ दिन, तीन मास में एक बार फोन किया करो, अब तक तुम्हारी स्थिति बिगड़े दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। तो कहा क्या करूँ, मैं माँ हूँ ना, मेरे से रहा नहीं जाता, तो वह चार पांच दिन ही होंगे, मेरा मन में उछल होने लगती है, फोन करूँ पता नहीं बच्चा कैसे होगा। फोन किया उधर से फायरिंग चालू, फिर नींद खत्म। ये स्थिति हो गई है बहुतों की। तो ये परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। हमें अपने को शक्तिशाली रखना ही है, कुछ चीजों में हमें अपने को हल्का रखना ही है। हल्का रखने के लिए अब एक लास्ट बात आपके सामने रख देता हूँ, सब जानते हैं लेकिन उसको भी प्रैक्टिस में लाना है। रोज एक बार सवेरे तो कम से कम याद कर लिया करें, दो तीन बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत होगा। वो है साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस। किन संकल्पों में करेंगे? चार संकल्प हम ले लें केवल। हमें साक्षी दृष्टा होना है जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए। बाबा ने अनेक बार कहा है साक्षी दृष्टा की स्थिति ही सबसे मीठी स्थिति है। बिल्कुल सरल एक्सप्लेन कर दिया, जैसे मैं इस संसार को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो, तो तुम वर्तमान बन जाओगे। बहुत बहुत रहस्यमय बात जो सबको प्रिय लगेगी, मुझे तो बहुत प्रिय लगी है, कि अगर तुम साक्षी भाव में स्थित रहो तो तुम्हारा एक मास का काम एक घंटे में पूरा हो जाए। कितने रहस्य भरी बात है। तो हम साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करेंगे चार संकल्पों में। पहला संकल्प, ये संसार एक खेल है। हम सब जानते हैं, हमारे लिए कुछ नई बात नहीं, केवल हमें याद करना है, ये संसार एक खेल है। यहाँ सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बहुत सुंदर संकल्प है। आपके परिवार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, कोई सुखदाई कोई दुखदाई, कोई बहुत अच्छा कोई कम अच्छा, कोई आपका बहुत सहयोगी तो कोई विरोधी, कोई बहुत प्यार करने वाला तो कोई घृणा करने वाला। एक परिवार में भी ये सब दिखाई देता है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। बहुत सुख मिलेगा। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। चार ये महावाक्य है बाबा के। मन का क्रोध शांत हो जाएगा, मन में हर एक के क्रोध रहता है दूसरों के लिए, इसने मेरे से ऐसा किया। एक सूक्ष्म क्रोध और बदले की भावना अग्नि के रूप में प्रज्वलित है हर मनुष्य के मन में, किसी के में कम किसी के में ज्यादा, थोड़ी थोड़ी। इन दो महावाक्यों से नष्ट हो जाएगी, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, और जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। कम से कम एक बार रोज अवश्य याद कर लें साक्षी भाव को, बहुत सुख मिलेगा। तो हम सभी वरदानों को याद करते हुए अपनी साधना की यात्रा को, जीवन की यात्रा को, और यूं कहें 5000 साल की इस यात्रा के अंतिम छोर को आनंद में व्यतीत करें, सुखद फीलिंग में व्यतीत करें, इस स्मृति के साथ कि जब 5000 साल की यात्रा पूरी होने को आई है तो क्या हुआ, क्या हुआ? स्वयं भगवान इस यात्रा पर हमारा परम मित्र बनकर हमारे साथ चल दिया और कहा, ये सारे बोझ मुझे दे दो, अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम अंतिम पड़ाव, अंतिम छोर के नजदीक हो, सारे बोझ मुझे देकर अब इस यात्रा का आनंद लो। लास्ट लाइन आप सबके सामने कहूंगा, सभी विचार करें, बुद्धिमान वही है जो आए हुए भगवान से सब कुछ प्राप्त कर ले, बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन का वर्तमान का संपूर्ण आनंद प्राप्त करे, जो अपने को कहीं उलझाए नहीं। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जिसने अपने को उलझा लिया हो, बुद्धिमान वो है जो उलझनों से सहज रूप से बाहर निकल जाए। तो हम सभी इस जीवन का संपूर्ण आनंद लें। ओम।